संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रयत्न सार परमागम का ज्ञान के विभाग अधिकार चलाना है। ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए प्रयत्न सार में सर्वज्ञता की चर्चा की है, समय सार में ज्ञान स्वभाव की चर्चा की है, वो भी सर्वज्ञ स्वभाव ही है। सबको जानने देखने वाला जो ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक, उसकी चर्चा समय सार में की है और प्रवचन सार में केवल ज्ञान की चर्चा की। केवल ज्ञान के संदर्भ में और जिसके आधार पर क्रमबद्ध पर्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सारे जगत के सामने प्रस्तुत की और जिसने एक अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति पैदा कर दी, उस उक्त संदर्भ में एक बात मैं आपको कहने के लिए दो तीन दफे कह चुका हूं, अभी मैं उसे आज आरंभ करना चाहता हूं कि हमने एक कहा कि पर द्रव्य से जब भेद विज्ञान का अधिकार है ना, इसका नाम क्या है? ज्ञान के विभागाधिकार। यहां पर के लिए गे शब्द का उपयोग किया, पर ज्ञान और गेय में विभाग करना है तो अपना आत्मा भी गेय तो है ना, और अपना आत्मा ज्ञान भी है, तो ये तो निष्कनक्की हो गया ना कि हमें अपने ही आत्मा से अपने आत्मा का भेद विज्ञान थोड़ी करना है। तो ये यहां पर गेय की ही बात है। ज्ञान गेय विभागाधिकार में मुख्य रूप से परगेय से विभाग की बात है। परगेयों में भी यद्यपि आकाशादिक भी परद्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, लेकिन इनसे कोई यह ज्यादा संबंध आत्मा का नहीं है। है तो अवकाश दान आकाश का काम है, चलने में निमित्त होना धर्म द्रव्य का काम है, ठहरने में निमित्त होना धर्म द्रव्य का है, परिवर्तन में काल द्रव्य है, ऐसे इसलिए बिल्कुल भी संबंध नहीं है, ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते। निमित्त निमित्त संबंध तो है ही ना, और परद्रव्यों से भी निमित्त निमित्त कई संबंध तो है, तो फिर भी इनमें कोई विवाद का कारण नहीं है, क्योंकि ये कर्म बंध के भी कारण नहीं है और कर्म बंध का उदय का परिणाम भी नहीं है। धर्म द्रव्य हमें इसलिए सहायता नहीं करता है चलने में कि हमारे पुण्य का उदय है ना, और पेड़ पौधों को इसलिए सहायता नहीं करता कि उनके पुण्य का उदय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तुम्हारे पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो है। जीव और पुद्गल यदि चलें स्वयं तो वे निमित्त हो जाते हैं, नहीं चलें तो नहीं होते, इसलिए उनके संबंध में ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो गेय हैं, जो वास्तव में मुख्य रूप से पुद्गल है, और पुद्गल भी में 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, तो उनमें 5 प्रकार की वर्गणाएं जीव से संबंध रखती हैं, आहार वैगणा, भाषा वैगणा, मनोवैगणा, कर्माण वैगणा और तेजस वैगणा। तो इनसे ही हमारा भेद विज्ञान की बात है, क्योंकि ये आहारक वैगणा से आहारक शरीर बना है, वैक्रिय जो आहारक वैक्रियक आहारक वैगणा और क्या आहारक शरीर बना है आहार वैगणा से, कौन से औदारिक शरीर और विक्रिय, और उसमें कारमान वर्णा से कारमान शरीर बना है, तेजस वर्णा से तेजस शरीर बना है, भाषा वर्णा से भाषा बनती है और मनोवर्णा से मन बना है। तो इनका हमारे संबंध है हम आत्मा से, और इन सबको हम एक नाम देते हैं शरीर। सब प्रकार के शरीर आ गए, भाषा आ गई, मन आ गया, सब आ गया, शरीर के अंग है ना, इसलिए मुख्य रूप से देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो गहराई हमें और आपको समझने में मिली है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। परीक्षामुख सूत्र एक न्याय का ग्रंथ है, जैसा तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी का सिद्धांत का ग्रंथ है और हमारे विद्यालय के कोर्स में सबको पढ़ाया जाता है, हमारे ही नहीं सभी विद्यालयों के कोर्स में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है। जितने भी विद्यालय खोलेंगे जैन धर्म के नाम पे, चाहे दिगंबरों का, श्वेतांबरों का, चाहे किसी का, हमारा, हमारे विरोधियों का, किसी का भी खुले, वो निर्वाध रूप से पढ़ाया जाएगा। जो स्थान तत्वार्थ सूत्र का है वही स्थान परीक्षा मुख का है। न्याय सूत्र में परीक्षा मुख सूत्र भी सब विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और आज से नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हमारे गुरु भी पढ़ते थे, मक्खनलाल जी वगैरह ने पढ़ा था, बनारस में पढ़ते बहनी जी पढ़े थे, तब से जो कोर्स चालू हुआ है तब से एक कोर्स में किताब है, यानी वो कोई साधारण किताब नहीं है, उसमें एक सूत्र है। और वो सूत्र सोनगढ़ वालों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी जैन सिद्धांत पर, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का थी, और प्रश्नोत्तर मालाएं जो पहले छपी थी वो पढ़ाई जाती थी, जिनमें अपन लोग जाकर के सोनगढ़ में पढ़ते थे, अपन खेमचंद भाई पढ़ाते थे और विद्वान भी पढ़ाते थे। तो उसमें एक सूत्र है, छयोपम लक्षण योग्य तयी प्रतिनियत मर्थम व्यवस्था पेयती स्वाभयन छयोपम। देखो हमारे विद्यार्थी इतने विद्वान हो गए कि वो हमारी भी से सुधार कर देते हैं। इसके साथ भी मेरी ये घटना जुड़ी हुई है। जब हम सबसे पहले सन 58 में सोनगढ़ गए थे दोनों भाई, तब वहां 200 लोग थे शिविर में सावन महीने के में, और खेमचंद भाई की क्लास में और रामजी भाई की क्लास में हम बैठते थे और गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे। तो खेमचंद भाई ये वही पढ़ा रहे थे कि योग्यता ही प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था करती है, तो उसमें योग तयैव इतना ही छपा था, योग तयैव प्रतिनियत मर्थम व्यवस्था देती। तो मैंने कहा खेमचंद भाई से कि ये सूत्र मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है और मुझे याद है, और मैंने बोल दिया वही स्वावरण लक्षण से युक्तम प्रतिनियत मर्थम व्यवस्था देती। तो आपने इसे काट के अकेला योग तयैव क्यों दिया, ये प्रश्न हमने खेमचंद भाई से क्लास में किया। खेमचंद भाई बोले भैया ये रामजी भाई का काम है, ये सब आप रामजी भाई से पूछना, मेरे को तो जो क्लास में कोर्स में है वो पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, वो पढ़ लो चुपचाप शांति से बैठते हैं। तो रामजी भाई की क्लास में गए तो वो पढ़ाते थे मोक्ष मार्ग से, पुरुषार्थ से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि नौवें अध्याय का वो प्रकरण पढ़ाते थे। तो वहां हमने पूछा और हमने ये भी कहा, खेमचंद भाई से पूछा था तो उनने ये कहा कि रामजी भाई बताएंगे, तो रामजी भाई ने मालूम क्या जवाब दिया, बोले अपन बाजार से आल लाते हैं, लौकी लाते हैं, गुजराती में क्या बोलते लौकी को, दूधी, तो दूधी को वैसी सब्जी बना लेते हैं, उसका छिलका छीलते हैं और उसकी वो बीज निकालते हैं और फिर बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपने आचार्यों के सूत्र के छिलके छील दिए हैं। और मैं थोड़ी क्लास में नोकझोंक हो गई, रामजी भाई तो मेरे दादाजी की उम्र से भी बड़े थे, है ना, बहुत बड़े। हम तो उस वक्त सन 58 की बात है, हमारा 35 का जन्म है तो 23 बरस के थे, और दादा 25 बरस के थे। तो हमने उनसे ऐतराज किया कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हुआ तो गुरुदेव के पास बात पहुंच गई। शाम को चर्चा में बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्यों पंडित, क्या बात है, क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? तो मैंने कहा, साहब ये आचार्यों का सूत्र है तो इसको पूरा देना चाहिए। और मैं हमने ये बात कहा तो राम जी भाई ये कहते हैं कि हमने दूधी जैसा छील लिया, तो हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने ऐतराज किया। तो बोले नहीं ठीक है, अगले अंक में सुधार लेना, ऐसा गुरुदेव ने कह दिया और बात खत्म हो गई। मतलब तो इसलिए वो इतनी बात जुड़ी हुई है उससे पहले ही से इतनी बताई, लेकिन मैं तो सूत्र का अर्थ बताना है मुझे। और हम सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अब जरा थोड़ी सी बारीकी में अपन को जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से उसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। और मैंने जो आपसे कहा कि मैं संभाव का अर्थ बताऊंगा, उस संभाव का अर्थ से भी इसका बहुत गहरा संबंध है, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। बौद्धों और जैनी आमने सामने हैं, क्योंकि वो न्याय का ग्रंथ है और उसमें अन्य मत की अपेक्षा से बहुत वर्णन होता है। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारा जो ज्ञान है वो किस गेय को जाने, ये कौन नक्की करता है, इसका नियामक कौन है? न्याय की भाषा में ज्ञान किस गेय को जाने, इसका नियामक कौन है, माने नियम बनाने वाला कौन है, इसका कंट्रोल कौन करता है ना? ये प्रश्न है कि ज्ञान जो गेयों को जानता है, यानी हमारी जो आंख है ये देखने का काम करती है, लेकिन ये किसको देखें, किसको नहीं देखे, इसका निर्णय कौन करेगा? बौद्ध सीधी सी बात करते हैं, आंख के सामने जो आएगा उसे देख लेंगे, वो तो सारी दुनिया की समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। कि ये कोई प्रश्न है, जो चीज सामने होगी उसे देख लेगी। क्या हम सुने हैं राजेंद्र जी आपकी बात, इन राजेंद्र की नहीं सुने, इसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि तो जिसकी आवाज आएगी तेज होगी उसकी सुन लेंगे, सीधा सा जवाब अपने सारे जगत के सामने यही है ना, बोलो विनय जी हैं? ऐसे गंध किसको सूंघेंगे आप, किसकी गंध का ज्ञान करेंगे आप? कहते जो नाक में टकराएगी उसका कर लेंगे, जो चीज स्पर्श करेगी उसकी ठंडे गर्म का ज्ञान कर लेंगे। बौद्धों का ये कहना है कि जो चीज सामने होगी ये उसको ज्ञान बना लेगा। फिर अपन लोग में कहते हैं ना कि हमें कोई पांच किताबें हैं और हमें बांटना है, तो हम ये कहेंगे आप पांच जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें दे दो। कैसे देना, इतने लोगों में पांच किताबें, पांच सज्जन हम कैसे छांटें? नहीं? बहुत कठिन काम है ना। या तो तुम पूरी किताबें दे दो और सबको दे दो तो बहुत आसान है, और या ये पांच नाम बोल दो तुम्हें और हम दे देते हैं। मैंने नक्की कौन करेगा कि ये पांच किताबें किन को देना और किन को नहीं देना, समझ में आया ना? ये समस्या है। तो बौद्धों ने तो ऐसा सीधा सच्चा निकाल दिया, इसको न्याय की भाषा में कहते हैं तदुत्पत्ति का सिद्धांत। तदुत्पत्ति, तदाकार और तदद्य बसाए, ये न्याय भाषा के शब्द हैं। मूर्खों को भी थोड़े थोड़ा परिचय इनका होना चाहिए, और ये न्याय क्रमबद्ध पर्याय की किताब में लिखा है, एक 1.5 लाख से ज्यादा छपी है और आप सब ने उसे पढ़ी है कई दफे। तो तदुत्पत्ति माने ज्ञान की उत्पत्ति गे से होती है, तद माने गे, माने ज्ञान का जो गे बना तो वो ज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ, तो कहते वो गे से हुआ, गे से ज्ञान की उत्पत्ति। इस बात को खेमचंद भाई समझाते थे अपने शिविरों में, और भोपाल के शिविर में हमने सबसे पहले सुना था परमात्मा ने तुम दो बरस के भी नहीं हो गए, हो सकता हो भी नहीं, नहीं हम गए थे सब उस शिविर में, बड़े दादा थे तो वहां लोग समझाते थे ये के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है, ये उनका सूत्र था। और आप पढ़ते थे सब, तब हमारी समझ में नहीं आता था कि इसका क्या मर्म है, ये कितनी बड़ी बात है, है? और सब गुरुदेव की वाणी का बात है। जे खेमचंद भाई को जज किया तो खेमचंद भाई ने अपना बना लिया मोटो कि गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। तो कैसे होती है फिर, कि ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। तो ये अनुसार क्या है, कि ज्ञान में ऐसी योग्यता है कि वो किस गे को जाने, ये उसकी योग्यता में सामर्थ्य है, और उसके लिए ये सूत्र पेश किया जाता है, योग तयैव प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति। क्या अर्थ है इसका, योग्यता ही प्रतिनियत अर्थ, माने कौन से पदार्थ को जानेगा, वो कौन सा पदार्थ नियत है, किस ज्ञान का कौन सा पदार्थ गेय बनेगा, ये नियत है, इसका नाम प्रतिनियत अर्थ। प्रतिनियत मर्थम, अर्थ समझ में आया ना, और व्यवस्थापयति, उनने पूछा था ना ये व्यवस्था कौन करेगा, तो कहते व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, हैं? ये कहें कि ये बच्चा मां के पेट में आया है तो ये 9 महीने बाद बाहर आएगा तो इसे बाहर लाने की व्यवस्था कौन करेगा। तो आज तो कह देंगे बड़े बड़े अस्पताल खुल गए, डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, और तुमको समय के पहले ही पेट में चीरा लगा के निकाल देंगे, हुँ? क्यों नहीं, वो कहते हैं वो बच्चा और मां जिसके गर्भ रहा है उन दोनों में ये पर्यायगत योग्यता है कि वो अपने सुनिश्चित समय पर वो बच्चा बाहर आ जाएगा, मां आ जाएगा, इस विषय में किसको ऐतराज था, और हजारों वर्ष तक ये चला, अभी अभी थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है मामला, हमको तो उदाहरण लेना है तो हम तब से ले लेंगे, आज का नहीं लेंगे, आज का उदाहरण से भी सेट होता है, घबराना नहीं, लेकिन मैं अभी वहां उलझना नहीं चाहता इसलिए मैं कहता हूं। आप समझ गए ना कि एक कौन नक्की करेगा कि बच्चा पेट में आ गया, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, पेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसा हमें तो कोई दिखता नहीं है कि ये कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, नहीं कब निकलेगा, सब नक्की है। किसने नक्की किया बोलो, आदिनाथ ने क्या, महावीर ने, किसी ने नक्की नहीं किया, कब से नक्की है क्या, अनादि से नक्की, अनादि से है, और बच्चा पैदा कब होगा वो अनादि से नहीं, वो स्व समय में, उसका समय नक्की है, ख्याल में आई ना आपकी में, तो वो ये है योग तयैव प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, यानी ईश्वर की जगह खड़ा किया है इस योग्यता को, उनके यहां जो ईश्वर करता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं ना, गॉड करता है ना, अल्लाह खुदा करता है ना, वो हमारा ये सूत्र है परीक्षा मुख सूत्र का, प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापयति, प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था वो करेगा, यानी हमारा केवल ज्ञान की पर्याय में तो सारा लोकालोक प्रति समय झलकता है, इसलिए किसको जाने और किसको नहीं जाने ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है, है ना। अब ये क्षयोपशम ज्ञान में ये प्रश्न खड़ा होता है, क्षयोपशम ज्ञान, तो क्षयोपशम तो अनादि से है ना, इस जीव को कर्म का क्षयोपशम, सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय नाम का जो ज्ञान है उसका निरावरण होता है, वो सब कर्मानियोग वालों से समझ लेना कि वो जो ज्ञान की है योग्यता क्षयोपशम, उस त्रयोपशम रूपी योग्यता में वो गेय नक्की है। जो राजमल जी ने लिख दिया ना, स्वान भूत्या वर्ण कर्म के त्रयोपशम से, तो लोग कौन सा कर्म है, हम तो इतने से इतने कर्म पड़े हैं, सारी जिंदगी कर्म कांड में निकाल दिया है? तुम पढ़ते हो ना कर्मकांड, उसमें आया नहीं क्या स्वान भूत्या वर्ण? मैंने सबसे पहले एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टरी की थी 15-16 वर्ष की उम्र में, और फिर हमने वो नौकरी छोड़ छाड़ करके और इधर आकर के एक गांव में पान की दुकान करी थी। तो उस वक्त मैंने एक छंद लिखा था परमात्म, कर्मन कांड पढ़ो हमने पर कर्मन ने जब कांड दिखायो, क्या सुरेश? कर्मन कांड पढ़ो हमने पर कर्मन ने जब कांड दिखायो, पान की आने दुकान करी भगवान ही जाने के दिमाग में आयो। वो रति कौमदी लिखी थी, वो भी मैंने उस वक्त लिखी थी, लघु सिद्धांत कौमदी पढ़ते हो ना तुम लोग, उसके बारे में भी एक कुंडलिया लिखी थी, रति कौमदी रात भर और दिन भर हो गई साफ, किए बहाने बहुत से गलती हुई न माफ, गलती हुई न माफ पड़ गए मैं तड़ातर, ऊ निकले शब्द अश्रु बह पड़े धड़ाधड़, कह रहे तू कभी राय कौम दी है बड़ी अटपटी, पिटे मुफ्त में हाय यद्यपि निस्भर रटी। ग्यारह वर्ष की उम्र में लिखा था ये छंद, हरिश्राम कौम जी पढ़ते थे ना तब, है ना? तो वो जो अपनी बात चल रही है काय की, कि कौन सी योग्यता, तो वो अनादि से नक्की है और आप उसमें बदला नहीं कर सकते, ये मुद्दे की बात है। हमारा हम ये कहते हैं कि देखो हम परद्रव्य के कर्ता नहीं है, हम परद्रव्य के भोक्ता नहीं है, हम परद्रव्य के स्वामी नहीं है, हम परद्रव्य रूप नहीं है, हम कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो अपन सब मान लेते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं 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 करते, नहीं नहीं करना, यद्यपि करने के विकल्प हमें चलते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर तो ज्ञानी धर्मात्मा ये स्वीकार करते हैं ना कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना? तो ये चार चीजें तो हमने बहुत आसानी से निकल गई। फिर वो कहता है भैया ये नहीं करें, हम पर में कुछ नहीं करें, लेकिन हम जान तो सकते हैं ना पर को, हमारा स्वपर का कर्तृत्व का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वपर का ज्ञायक स्वभाव तो है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो है, इतना तो बचने दो हमारे लिए। तो ये गेय ज्ञायक संबंध हमारा पर के साथ में उससे अलग खड़ा होता है। यद्यपि नयों की अपेक्षा में जब लगाते हैं ना, तो जिस असदूत व्यवहार नए में उसे डालते हैं ना, उसी में इसे डालते हैं, वो कभी चर्चा फिर बाद में करेंगे। अभी तो ये कहते हैं कि एक या एक संबंध है, तो अब हमारी समस्या ये हो गई कि हमारे पास ज्ञान का क्षयोपशम तो बहुत कम है और हमें जानने को तो सारा लोकालोक पड़ा है, तो हमारे विद्वान लोग हमें समझाते हैं कि भई तुम पर को मत जानो, अपने को जानो, सबको अच्छा लगता है, हम प्रयत्न भी करते हैं कि सारी दुनिया को जाना पर जानने वाले को नहीं जाना, जाना नहीं एक आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं निज आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए। तो हमें एक अपना आत्मा को जानना चाहिए और पर में अपने उपयोग को खराब नहीं करना चाहिए, ये मेरे सह सब उपदेश देते हैं, है ना? अब ये कहते हैं गंभीरता से विचार करो कि जो तुम कहते हो पर को मत जानो और अपने को जानो, और उसके लिए तुम प्रयत्न करो, और हम सब करते भी हैं, सामायिक में बैठते हैं ना तो कोशिश करते हैं ना, पहले तो कोई नमोकार मंत्र पढ़ता है, कोई भक्तामय जी का पाठ करता है, कोई कुछ करता है, और हम बड़े पंडित लोगों को समझाते हैं कि देखो ये एक पढ़ पढ़ के सारी जिंदगी निकल गई, अब थोड़ा अपने उपयोग को आत्मा पे ले जाओ, आत्मा को जानो सुरेश जी, अभी इससे कुछ नहीं होएगा है? आप कहते ना, और हम अपने उपयोग को फिर हम सब बैठ के शांति से कोशिश करते हैं उपयोग को समेट कर अंदर ले जाने के लिए, सब करते हैं। जितने ध्यान के शिविर लगाने वाले तो सब वैसे बताते ही हैं, अब ऐसा करो, वहां से हटाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, वो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि पर का उपकार करना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए, लेकिन भैया ये करने के पहले हम कर सकते हैं किसी का उपकार, इस पर तो नक्की कर लो। यदि कर ही नहीं सकते हैं तो करना चाहिए का उपदेश का क्या मतलब? यदि ये नक्की हो गए कि हम कर ही नहीं सकते हैं कुछ, पहले ये नक्की हो गए कि हम कर सकते हैं, तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की बात आएगी सामने। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको फालतू भटका रहा हूं, मैं अपने मुद्दे तक ले जा रहा हूं आपको? क्यों देखो, बहुत बहुत पढ़ लिए शास्त्र, बहुत पढ़ लिए, अब तो आप अपने आत्मा को पढ़ो, और बहुत उपदेश बहुत हो गया, बातें बहुत हो गई, क्रियाकांड बहुत हो गया, अभी तो अपने आत्मा में जाए। ऐसा बराबर लोग कोशिश भी करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि पंडित जी साहब एक प्रश्न है कि क्या कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा उपयोग आत्मा में तो गया ही नहीं। जब मैं आंखें बंद करके ऐसा बैठा तो मैं आत्मा पे उपयोग को ले जाने की कोशिश करता था और उपयोग मुफ्त में शिखर जी की वंदना करके आ जाता था, शिखर जी चला जाता, अमेरिका चला जाता, कहां कहां भाग जाता है? एक पैसे का टिकट दिए बिना क्यों सारी दुनिया की यात्रा करता, लेकिन वो आत्मा पे नहीं आता, आत्मा उसके ज्ञान का गेय नहीं बनता। और ऐसी हमारी तकलीफ है ना, ये क्यों सुरेश जी है ना ये तकलीफ? अगर हम सामायिक में बैठते हैं, मतलब फंडामेंटल तकलीफ है ये, कह रहा हूं मैं आपको, हर एक की, कोई माने हो चाहे नहीं माने, और वो कोई कह दे दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए कि नहीं मेरे को तो आत्मा का अनुभव हो गया, लेकिन अंदर से तो बहुतों का ऐसा ही है कि मुझे सच्ची बात जो कोई चीज ऐसी है वो दिखी तो नहीं, वो आत्मा दिखा तो नहीं। तो रमन जी कभी ये जानते थे, इसलिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने सर लिखा, बेटा कुछ नहीं दिखेगा, काय को पा माथा मार रहा है। क्या लिखा, कहां लिखा, पढ़ा? रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना। उनने लिखा कि आगम में लिखा है, वहां से पढ़कर और उसको समझकर उसमें उपयोग को स्थिर करता है, ऐसा लिखा, अनुमान से निर्णय करके उसमें उपयोग स्थिर करता है। पुरानी पहले समझी थी, फिर वो इसे याद करके स्मृति करके उसमें उपयोग स्थिर करता है, तो वो अंदर से फिर तो आत्मा आप लोग को साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो मालूम क्या लिखा है आलोक जी, ये रूमाल दिख रहा है ना आपको साफ साफ, और मुझे तो आपसे ज्यादा साफ दिख रहा है क्योंकि मैं पास में हूं, आप दूर हैं, लेकिन अंदर में जो वो आत्मा है ना अनुभव करने वालों को, इतना साफ भी नहीं दिखता। कैसा लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, बोलू रूप इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसा भी निर्मल नहीं होता। इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलते ना इसे, कि मैंने अपनी आंख से देखा, आत्मा अनुभव में इतना निर्मल भी नहीं होता। क्या कह रहे, कि प्रदेश तो दिखते ही नहीं, कि प्रत्यक्ष तो लिखा है कि प्रत्यक्ष मत्यक्ष होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, कि तुम्हारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे पास तो परोक्ष ज्ञान है, आद्य परोक्षम, हमारे पास दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और वे दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और उन्हीं में सारा ये काम हो रहा है। तो फिर प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं कि इन्हीं में जरा थोड़ा धुंधला देखे वो हमने उसे परोक्ष कह दिया और थोड़ा साफ देखे उसको प्रत्यक्ष कह दिया, परोक्ष में ही दो भेद कर लिए। क्या समझे? अपने दो बच्चे हैं, एक 3 फुट का एक 3.25 फुट का, दोनों ही वो बावनियां हैं, समझ में आई ना आपकी में? फिर उसमें भी अपन छोटे बड़े का भेद तो कर लेते हैं ना, ये बड़ा है 3 इंच और ये 3 इंच का, दोनों ही छोटे, समझ गए ना? ऐसे क्लियर से पढ़ो एक दफे, देखो तो क्या होता है। और ये लिखा है कि वो अनुभव से जब बाहर आता है शांति जी, तब कुछ भी नई जानकारी नहीं होती, नया जानना नहीं होता। जैसा वो अनुभव में गया था, जो जानकारी थी वो ही जानकारी रहती है, कुछ भी नया जानना नहीं होता। ये शब्द टोडरमल जी के बोल रहा हूं, सूत्र जैसे पढ़ना। किसी को पता ही नहीं, अभी तो वो तो कोशिश कर रहा है, सूरज जैसा दिखे, चमकता हुआ दिखे, हजार लट्टू जैसा दिखे। पंडित जी ने कहा पागल हो गया है, ये सूरज जैसे, ये तो पुद्गल की थे, ये रोशनी जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो आत्मा नहीं, आत्मा में रोशनी फोशनी है ही नहीं। अब उसकी बात में भी बाद में करूंगा। माने हमारे ज्ञान में कितनी कचास है, हमारे प्रयासों में कितनी कचास है, और वो जानकारी के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, समझ के लेवल पर कितनी कचास है, क्रिया के लेवल की बात नहीं है। अब ये धंधा चल गया है, बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे रीढ़ की हड्डी करे सीधी करे बैठ जाना चाहिए, ये करना है उनके लिए है? कुछ करना चाहिए मैंने, ये करना चाहिए, वो कुछ का अर्थ ही नहीं समझते, वो कुछ क्या है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप सब, हम आप सब प्रयत्न करते हैं कि हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने और पर पदार्थ हमारे ज्ञान के गेय नहीं बने, करते ना। अब यहां पर खड़े रह करके वो कहते हैं कि तुम्हारी ज्ञान पर्याय, जिस ज्ञान पर्याय को तुम बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मुड़ना चाहते हो, अभी तो है ना समय अपने पास, अभी ज्ञान पर्याय जिसको तुम बाहर से अंदर की तरफ मुड़ना चाहते हो, वो तो अपना गेर नक्की करके आई है, वो किसको जानेगी वो उसके स्वभाव में नक्की है। तुम उस लड़की के चक्कर काट रहे हो जिसकी सगाई हो गई है, कि तुम पसंद करते फिर जाओ, लेना नहीं देना नहीं है, मूर्ख माने जाते ना वो। अब उसे कहे इसकी तो सगाई हो गई साहब, तो भी मैं देख तो लू, क्या देख ले रही हो, अभी परस्त्री को देखना हो गया, ये भाव अच्छा नहीं है। कोई लड़की के माँ बाप तेरे को दिखाएंगे नहीं, लड़की भी तेरे को दिखाएगी नहीं, ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो क्या हो सकता है, तुम अंदाज लगा लो है कि नहीं है। ये वो जो तुम्हारी ज्ञान पर्याय जिसे तुम मोड़ना चाहते हो, वो अपना गे नक्की करके आई है। ये किसने नक्की किया? हमारी पर्याय का हम नक्की करेंगे, तुम कौन होते हो कि हमने नहीं किया, तुम्हें ही नहीं किया है, भगवान ने भी नहीं किया, कि हमने किया। किया माने जो तुम्हारा वो है नक्की है, वो जो कुछ है वो तुम्हारी कृति है, तुम्हारी संपत्ति है, मेरा मतलब समझ गए ना। उसमें पर का कर्तव्य तो नहीं है, तुमने कुछ फेरफार करके सोच समझ के किया है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। यदि किसी तरह उसके कर्तव्य तो थोपना है किसी पर, तो वो तुम्हारी ही आत्मा की जिम्मेवारी है उसकी। ख्याल दादा ख्याल में आ रही बात? अब वो पर्याय तो हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, जे पढ़ लिए, जे पढ़ लिए, इतना ज्ञान हो गया हमको। ये ज्ञान नहीं है, घबराना नहीं है, ये तो यूज्ड ज्ञान है। यूज्ड ज्ञान मतलब समझ में आई ना, जिस ज्ञान का उपयोग हो चुका है। ये यूज्ड कारें होती है ना, बिकती हैं, अमेरिका में बहुत बिकती हैं, अब यहां भी शुरू हो गई। तो जो गरीब आदमी होते हैं वे लेते हैं, पैसे वाला कोई यूज्ड कार की बाजार में जाता है क्यों? एक दिन भी पुरानी कार हो तो पैसे वाला पसंद नहीं करता है। तीन दिन में एक कुर्ता पहन लूं और फिर कहूं मेरे को जरा ओछा पड़ता है, राजेंद्र जी आप ले लो, कि नहीं नहीं आप किसी और दे देना, आपको मेरे को समझते क्या, मैं किसी के उतारण के पहनता हूं। ये उतारण का नहीं है, हमें तो बना ही नहीं है, अंदर गया ही नहीं है ढंग से, कुछ नहीं, आपने मेरा अपमान किया है। वो सब यूज्ड ज्ञान है, जिसने समय सार जान लिया है, प्रयत्न सार की गाथाएं जान ली है, तो उनका गेय तो जान ली, माने ज्ञान का गेय नक्की था और वो उपयोग हो चुका उसका। अब वो ज्ञान द्वारा काम नहीं आएगा, अब वो ज्ञान जो तुम्हारे काल में है, परमात्मा धारणा में है ना अंदर, तो वो स्मृति में आएगा ना, धारणा का ज्ञान, तो वो गेय बन के आएगा। अब हम तुम्हारे यहां आएंगे तो दूल्हा बन के नहीं आएंगे, किसी की बारात में आएंगे, बराती बन के आएंगे। दूल्हा बन के तो एक दफे आ चुके, एक ही दफे बनते हैं, आप समझिए ना। वो जिस ज्ञान पर्याय ने किसी एक गेय को एक समय में जाना, वो ज्ञान पर्याय यूज्ड हो गई, अब वो जानी जाएगी, वो जानने का काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कुछ में जो क्या कह रहा हूं, सबकी समझ में आ रहा है ना? लगेंगे दो तीन दिन तो लग जान देना, लेकिन इसको समझ लेना, बहुत मार्मिक बात है। जिस ज्ञान पे तुम इतने अकड़ रहे हो ना कि मुझे सारी गाथाएं याद हैं, मेरे को ये याद है, ये है, वो सब यूज्ड ज्ञान है। उस ज्ञान से तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, आत्मा तो बहुत दूर की बात है, उस ज्ञान का गेय आत्मा नहीं बनेगा। तो फिर बिल्कुल जो नई पर्याय निकलेगी ना, जिसके जो अभी यूज्ड नहीं हुई है, उसे जान लेंगे। तो कहते वो अपना गेय नक्की करके आती है, अपने नहीं कहते हैं कि अपने घर में जो बेटी पैदा हुई है तो उसका पति तो 4-6 साल पहले ही पैदा हो गया। क्या क्या, क्या बोलते हैं, उसे अब पैदा नहीं होना है, किसको? अपने बेटी के पति को पैदा नहीं होना है, वो तो कहीं पैदा हो गया है। और जब तक तुम सगाई नहीं कर दो तुम कहो कुंवारी फुंवारी है ही नहीं, वो तो सगाई सदा सगाई नक्की है, जैसी सिद्धार्थ की तिसला से नक्की थी। तो तुझे कोई चुनाव बुनाव करने का कुछ अधिकार, सब सबके ही तो कुछ तो बची होगी मेरे लिए, जिनमें से मैं तुम्हें नहीं, एक भी नहीं बची, वो एक बची है जो तेरे ही भाग्य में लिखी हो, जो तेरी ज्ञान की उस पर्याय का गेय बनना होगा, बस वो ही है और उसके अलावा दूसरी हिलने की जगह नहीं है। सचमुच में बहुत विचार करते हैं, 2 महीना से तो मेरा दिमाग इसमें ही लग रहा, 24 घंटे इसमें लग रहा। तो 2-3 दिन तक यदि मैं आपका समय लूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना, मेरा अत्यंत प्रिय सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ में अपने ज्ञान की पर्याय का एक समय का गेय बदलना नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते ये तो समझो भले आदमी, और कितने कर्तृत्व के जोम में मरे जा रहे हैं, ऐसा करूंगा। ये किससे कह रहा है? तुमसे कह रहा हूं, सबसे एक एक से, अपने से कह रहा हूं, खुद से सोचता हूं कि क्या के चक्कर में हो। ये तो कहते ही हैं कि भैया अपनी जितनी आयु है उसे ये एक पल घटेगा नहीं, एक पल बढ़ेगा नहीं, ये तो अपन कहते हैं। आयु फायु कहां की बातें कर रहे तुम पागल बन की? ये तो कल बनी थी, ये तो खुद पराधीन है, ये तो अनादि से नक्की है, झकमार के उसके समान बनना पड़ता है इस आयु को। क्या क्या समझे सुरेश, मैं क्या कह रहा हूं? तो अगले भव में कौन से भव में जाओ, घबराना नहीं, उल्टा उल्टा सीधा अर्थ मत निकालना। किस भव में जाओगे ये तुम जो कि आयु कर्म बांधूंगा जिसमें उत्तरकाल में कौन सा बांधेगा, क्या बोलते हो, प्रभाग, इन कर्मानियों के चक्कर में मत आना तुम। उत्तरभाग भाग में बनेगी वहीं जाऊंगा, उत्तरभाग भाग एक तरफ रखा रहेगा, उस त्रिभाग को वहां बंधना पड़ेगा जहां तुम्हारे जाना पहले से नक्की है। बोलो प्रमोद जी, कुछ कह रहा हूं ना, कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। तुम अपनी हैसियत का विचार तो कर, मेरी गलती होगी, आए की गलती जो किन्मत भर के अनुसार जो जो हुआ वो हुआ, न मेरे हाथ में कहना था, न मेरे हाथ में रोकना है, न भूत का था, न वर्तमान का है, न भविष्य का है। जब जो सुनिश्चित होगा तब वो होगा। क्या आप वचन दे दो? काय का वचन दे दू, किसको दे दू, मेरे हाथ में है, कह दो मैं दे दू। तुम वचन ही ले सकते हो। होना जाना तो मेरे से कुछ है नहीं, क्या समझ में आया ना? नहीं, सचमुच मैं 2-3 महीने से लगातार इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं। मैंने इससे अमेरिका में भी बात की थी, क्या नाम, संजीव गोधा से, कि ये क्या है, काय का विकल्प कर रहे हो, कुछ है तुम्हारे हाथ में? कैसे दादा, अपन सोचेंगे, अपन बैठेंगे, सोच लेना, बैठ लेना, मैं मना थोड़ी करता हूं। 3 बजे बैठेंगे, 5 बजे, जितने बजे बैठना वो बैठ लेना, मैं बैठने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जिसका मोक्ष नजदीक आ गया है, संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो जाएगा मोक्ष में जल्दी से जल्दी, है ना। और जिसका संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर है, अभी उसको दूर है, किसका, मैं किसी का नहीं कह रहा हूं, मैं तो जिसका ऐसा कह रहा हूं, फिर भी तुम अपने माते कह ही नहीं रहा हूं। आप पॉइंट नहीं समझ गए ना, किसी की बात ही नहीं है, व्यक्ति की बात कहां है, कैसा तुम्हारा, तुम्हें जहां जाना होगा तुम नरक में जाओगे, जहां जाना होगा, हम तो जहां जाना होगा वहीं जाएंगे, और तुम मेरे दिमाग में तब से घूम रही है कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और घर वालों को बता दिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं जाने की तैयारी में हूं। मैं तो अपने आराम से बैठा था, मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, रह रहा था। उस भंगिन को पता था जो मेरा लेटरिन बाथरूम साफ करने आती थी, मुझे पता नहीं था। क्यों? कि वो मेरी भंगिन मेरे से कहती थी कि साहब, दादाजी, आप उस वार्ड में क्यों गए थे? डॉक्टर ले गए थे तो गए थे। अरे उसमें जो जाते हैं वे लौट के नहीं आते, आप तो एकदम अच्छे हो। भंगिन ने मेरे से कहा था, सच बोलता हूं, आप तो एकदम अच्छे हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। वो डॉक्टर के जल्दी जाओ, जो छुट्टी हुई है ना उस बाद में से, जल्दी जाओ, बात मत करो, जल्दी निकल जाओ यहां से, ऐसा कोई निकल के जाता नहीं है क्या? उस वक्त भी मेरे से किसी ने पूछा था, कहां जाओगे, किधर जाओगे? मैंने सोचा क्या कह रहा है, कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तो अपने में रहना है। नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। कहां? कहां जाना पड़ेगा? कि दूसरे स्वर्ग में कि चौथे स्वर्ग में? उसी वक्त ऐसी चर्चा के बीच ये बात आई थी, लेकिन जो ज्यादा ऊपर जाने में कोई रस नहीं है, क्योंकि उतने ही सागर संसार में फंसे रहना पड़ेगा। अभी इतना लंबे काल तक संसार में रहने का मेरा विचार नहीं है, रहना पड़ेगा तो रहेंगे क्यों? अब आदिनाथ फंस गए थे सरवार सिद्धि में, तो वे 33 सागर तक फंसे ही रहे। वो कौन सा छोकरा आज पढ़ रहा था ना, कोई पंडित था भाई, तो वो कह बता रहा था इतने इतने पल, इतने इतने क्या क्या, इतने इतने इतने, फिर वो 33 सागर कौन बता रहा था? मुझे तो याद नहीं रहते हैं। कौन था हैं? उसमें आया था गुरुदेव की, वो विद्यार्थी ने बताया था ना। मैं अपने यहां का स्पीकर 24 घंटा चालू रखता हूं, बंद नहीं करता हूं। जिनके फोन वोन आता है तो तब उठाना, तो मैं तो उठाता ही नहीं हूं फोन। मैंने कम से कम 2-3 साल से तो फोन उठाया ही नहीं है। घर का वो नौकर रहता वो उठाता है, क्योंकि भाई उठाती हैं, वो सुनते भाई दूर जाकर बात कर लो, कोई बहुत जबरदस्ती मेरे से बात करना चाहे तो हाँ हूं बोली बात करता हूं। मैं ज्यादा बात में मुझे बात करने में रस नहीं है, मैं खत्म क्या। क्या है क्या करें? वो संभाव पे अभी आऊंगा कि जरा मैं अपनी समाधि मरण के वो उदाहरण बनाता हूं, सिद्धांत नहीं, उदाहरण बनाता हूं, जो संभाव समझाना है ना मुझे उसके लिए, अभी है ना 5-1 मिनट, संभाव समझाने के लिए उदाहरण बनाता हूं कि समाधि है ना, तो आदि व्याधि और उपाधि से रहित समाधि है, तो समाधि में सम है ना, ये सम क्या है? एक शब्द में बोलूं एक तो उसका स्वरूप मैं बताता हूं कि ढूंगो मायके जाओगे कि हाँ जाएंगे, ढूंगो सासरे जाओगे कि हाँ जाएंगे, बस इसका नाम है समाधि मरण। नहीं आया समझ में? तुम बुंदेलखंडियों की तो समझ में आ गया होगा। एक भोली भाली लड़की थी बेचारी, बिल्कुल कुछ ज्यादा समझती नहीं थी, भद्र प्रकृति थी, शादी हो गई, अब वो कभी पीहर में रहती कभी ससुराल में रहती। ससुराल में रहती तो लोग पूछते क्यों, ढूंगो उसका नाम था समझ लो, कि ढूंगो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, मायके में होती तो वे पूछते ढूंगो ससुराल जाओगी कि हाँ जाएंगे, जहां कहो वहां जाएंगे, हमको क्या है, कि नहीं जाना है कि नहीं जाएंगे, उसे कौन दुखी कर सकता है बोलो आप, ऐसे जीव को कौन दुखी कर सकता है मुझे बताओ आप, हैं? जाएंगे तो जाने को तैयार, नहीं जाएंगे तो नहीं जाने को तैयार, कि आज ही जाना पड़ेगा कि अभी तैयार हो, तो बोलो क्या है? आज की बात क्यों करते हो, नहीं कैंसिल हो गया कोई बात नहीं। माने जो सारा जगत का परिणमन है उसको अत्यंत सहज भाव से स्वीकार करना, इसका नाम है सम, इसका नाम है समाधि। मेरी बुद्धि में ये कि मरे मर जाए, नहीं मरे नहीं मरे, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा लिखी ना विचारों में, न जीने की इच्छा न मरने की, इसका क्या अर्थ है बताओ राजन जी, कभी सोचा न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, मतलब क्या कि मरोगे नहीं, कौन कहता नहीं मरेंगे, तो जियोगे हाँ जिए, जी जियो तो जीने को तैयार, मरे तो मरने को तैयार। माने हर परिस्थिति के लिए हे उपाधेय नहीं करेंगे, नरक में कहेंगे नहीं जाएंगे, स्वर्ग में कहेंगे जाएंगे, नहीं, इसका नाम समाधि नहीं है, कि नरक में, ठीक है, कि स्वर्ग में, कि ठीक है, हैं? ऐसी समाधि हमें नहीं चाहिए। तो संभाव रखना है ना, क्योंकि हमको तो ये जगत पसंद ही नहीं है, ना नरक ना स्वर्ग। हमें तो अपने में जाना है, उसे मोक्ष में जाना कह लो, है ना। अब जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक टेम्परेरी कहां की धर्मशाला में ठहरना है, क्या फर्क पड़ता है ना। अपन जाते हैं ना तो फाइव स्टार बड़े बड़े होटलों में भी ठहरने को मिलता है, उसमें भी जाकर सम्राट जैसे ठहरे रहते हैं, और फिर एक ऐसी धर्मशाला भी हो जाती है जिस खटिया नहीं होती है, खटिया के नीचे पड़े रहते हैं, तो वहां भी आराम से निकलते हैं ना। ये हमको तो ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि ना उस होटल में अहम बुद्धि आती है, ना वो खटिया में अपर बुद्धि आती है, ना कोई अपनी नहीं है। चार घंटे काटना है, चाहे होटल में काट लो चाहे उसमें काट लो, ऐसा हो सकता होगा, होता है, होना चाहिए। इसका नाम समाज, इसका नाम सम है, संभाव है इसका नाम, आप समझिए ना। काली द्रुप आत्मा का कोई जरूरी नहीं है कि गेय बने, छपक श्रेणी चढ़ रहा हो तब भी पर पदार्थ गेय बनता है। शुद्ध उपयोग आत्मा में लीन, आत्मा में लीन, आत्मा आज कहां की आत्मा फात्मा लगा रखी है, बोलो। पूछे इन करुणान योग वालों से, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति सब होती कि नहीं होती। वो संभाव मुख्य है समाधि मरण में भी, समझ में आया ना। सामायिक में भी क्या क्या पढ़ूं, कि नहीं नहीं कुछ नहीं, देखो आत्मा को देखो, उसका नाम शुद्धोपयोग नहीं है। उसमें क्या लिखा, आत्मोपयोग। आत्मा को देखना जरूरी होता तो आत्मोपयोग लिखते, शुद्धोपयोग क्यों लिखते। उपयोग की शुद्धि खत्म नहीं होनी चाहिए, वितरागता खत्म नहीं होनी चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा कि ऐसा क्यों हुआ आठवें गुण स्थान में कि वो आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा वितरागता खत्म नहीं हुई, वितरागता बढ़ रही है इसलिए हुआ। और वितरागता माने क्या, ढूंगो माए के जाओगी कि हाँ, ढूंगो ससुराल जाओगी कि हाँ, हर बात के लिए तैयार। उसका नाम है समाधि, उसका नाम है जैन धर्म की सच्ची स्वीकृति, इसका नाम है इस क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति। हमें किसी बात में भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमें विकल्प भी नहीं है उसे पलटने का। यदि बलन बलन ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए बगैर मरे, क्योंकि जैसा तू सोच रहा है वैसा होना नहीं है, ख्याल में आई ना। तो तू सहज भाव से उस बात को स्वीकार करे तो ये समता भाव है। इसी समता भाव को एक दफे हम समझें सच्चे हृदय से, फिर बाद में उसे अपने जीवन में लाएं, ऐसी मंगल भावना से मैं अभी की बात सुनाता हूं।